पृष्ठ संख्या 72, षष्ठ अध्याय का शेष। हेडिंग है कुसा निवासी निकोलस, निकोलस ऑफ कुसा। सन 1401 से 1464। निकोलस का दर्शन मध्य युग और आधुनिक युग के विचारों की संधि है। मध्य युग के धार्मिक और शास्त्रीय विचारों में सुधार करके उनको अपनाना निकोलस को अभीष्ट था। वे स्वयं पादरी थे, पोप और चर्च की प्रभुता उन्हें मान्य थी, किंतु वे निरंकुश सत्ता के उपासक नहीं थे। उनके मत में राजा की सत्ता प्रजा की और पोप की सत्ता धर्म की देन है। अतः निरंकुशता को रोकने के लिए राजा की सत्ता प्रजा के प्रतिनिधियों की समिति द्वारा और पोप की सत्ता धार्मिक पादरियों की समिति द्वारा नियंत्रित रहनी चाहिए। आधुनिक युग की सभी विशेषताएं ग्रीक दर्शन का प्रेम, गणित और भौतिक विज्ञान का अनुराग, व्यक्ति की महत्ता और स्वतंत्रता, सुंदर भविष्य की आशा, बुद्धिवाद की प्रधानता, निरंकुशता का विरोध, आलोचनात्मक प्रणाली आदि उनमें विद्यमान हैं। किंतु इन विशेषताओं को उनकी धार्मिक श्रद्धा और रहस्यवाद के प्रेम ने नियंत्रित रखा है। उच्च टंखल नहीं बनने दिया। निकोलस निःसंदेह एक महान दार्शनिक थे। उनके विचारों का प्रभाव ब्रूनो, स्पिनोजा, लाइबनिट्ज, सेलिंग और हेगल के विचारों में स्पष्ट प्रतीत होता है। उनकी दार्शनिक महत्ता अभी तक पूर्ण रूप में स्वीकृत नहीं हो पाई है। कारण यह है कि अपनी धर्म भीरुता के कारण वे अपने उन विचारों को जो ईसाई धर्म के प्रतिकूल पड़ते थे पूर्ण विकसित नहीं कर सके, और इसके लिए यूरोप को लगभग 125 वर्ष और प्रतीक्षा करनी पड़ी। पृष्ठ संख्या 73। जब ब्रूनो ने साहसपूर्वक उनका उद्घोष किया और अपने विचारों को छोड़ देने की अपेक्षा धर्म के ठेकेदारों के हाथों कारावास की यंत्रणा सहकर और आग में जीवित जलाया जाकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ देना अधिक पसंद किया, अपने प्राणों को हंसते हंसते बलिदान करने वाले प्रातः स्मरणीय महान ब्रूनो की ख्याति से निकोलस की ख्याति ढक गई। निकोलस के दर्शन में विशिष्टाद्वैत और अद्वैत का विलक्षण समन्वय है। वे इन दोनों को विरुद्ध न मानकर विशिष्टाद्वैत को अद्वैत का पूर्व रूप ही मानते थे। मानवीय बुद्धि के लिए विशिष्टाद्वैत सर्वोच्च सिद्धांत है, क्योंकि बुद्धि तत्व के पूर्ण रहस्य को नहीं समझ सकती, किंतु तत्व का वास्तविक स्वरूप अनिर्वचनीय अद्वैत ही है। जहाँ वाणी और बुद्धि की गति नहीं रहती, निकोलस के ये और कुछ अन्य सिद्धांत जैसे पृथ्वी सृष्टि का केंद्र नहीं है, पृथ्वी घूमती है आदि, स्पष्ट ही ईसाइयों के द्वैतवाद के प्रतिकूल है। फिर भी ईसाई पादरी और श्रद्धालु जन निकोलस को सम्मान की दृष्टि से ही देखते रहे, क्योंकि निकोलस स्वयं धर्मात्मा, ईसा के कट्टर भक्त और श्रद्धालु पादरी थे, पोप और चर्च के उपासक थे, और यद्यपि कई पादरी उनके इन सिद्धांतों से असंतुष्ट थे, तथापि उनके अद्वैतवाद को भुलाकर और विशिष्टाद्वैत को तोड़ मरोड़कर द्वैतवाद के रूप में गले के नीचे कुछ कड़वी घूंट के समान उतार देना धर्म भक्त को भक्तों के लिए विशेष कठिन न था। निकोलस ने ज्ञान के चार स्तर बताए हैं। प्रथम, इंद्रिय संवेदन इमेजिनिशियो, जिसमें बाह्य और अंतर दोनों प्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञान आता है। द्वितीय, सविकल्प तर्क या विश्लेषणात्मक बुद्धि या रेशियो। तृतीय, संश्लेषणात्मक प्रज्ञा इंटेलेक्टस। और चतुर्थ, निर्विकल्प ज्ञान या अपरोक्षा अनुभूति इंटुसियो। इंद्रिय प्रत्यक्ष द्वारा वस्तु का संवेदन होता है, यह विधानात्मक है, निषेधात्मक नहीं। इसमें ज्ञान धुंधला और क्षीण होता है। इन अस्तव्यस्त संवेदनों में एकता नहीं होती, अनेकता ही होती है। यह द्वैत का स्तर है। इसके ऊपर का स्तर सविकल्प तर्क या अनुमान का स्तर है। इसमें विधि और निषेध दोनों का प्रयोग होता है। तर्क के विकल्पों में एकता और अनेकता दोनों का आभास मिलता है, किंतु अलग अलग। द्वैत और अद्वैत की पृथक पृथक कल्पना उपलब्ध होती है। दोनों में विरोध प्रतीत होता है, सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता। पृष्ठ संख्या 74। तर्क का काम विश्लेषण और विभाग करना है। यह स्तर द्वैता अद्वैत का है। इसके ऊपर उठने पर संश्लेषणात्मक प्रज्ञा का स्तर आता है, जो अनेकत्व में आधारभूत एकत्व को जान लेती है। यह स्तर विशिष्टाद्वैत का है। इसमें अद्वैत द्वैत से विशिष्ट रहता है। प्रधानता अद्वैत की ही है, किंतु बिना द्वैत के अद्वैत नहीं रह सकता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बिना अद्वैत के आधार के द्वैत नहीं टिक सकता। इस स्तर पर ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान की त्रिपुटी बनी रहती है। विशेषण रूप और गौण द्वैत में अनुचित आधारभूत तात्विक अद्वैत का साक्षात करना मानवीय सविकल्प बुद्धि की पराकाष्ठा है। किंतु इसके द्वारा भी वस्तुतः परमार्थ का ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि परमार्थ बुद्धि के किसी भी विकल्प द्वारा, भले ही वह विशिष्टाद्वैत रूपी सर्वोच्च विकल्प ही क्यों न हो, ग्राह नहीं है। अतः तत्व का साक्षात्कार निर्विकल्प ज्ञान या अपरोक्ष अनुभूति द्वारा ही हो सकता है। जहाँ वाणी और बुद्धि का प्रपंच, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान की त्रिपुटी नहीं रहती। यह स्तर अद्वैत का है। बुद्धि तत्व की ओर संकेत मात्र कर सकती है, उसका ग्रहण नहीं। सविकल्प बुद्धि का अपनी सीमा को जान लेना बड़ी भारी बात है। तत्व की अज्ञता और अनिर्वचनीयता का ज्ञान मानवीय बुद्धि की चरम सीमा है। यह अज्ञता और अनिर्वचनीयता तत्व का निषेध नहीं करती, यह तो तत्व की बुद्धिगम्यता और निर्वचनीयता का ही निषेध करती है। इससे यही सिद्ध होता है कि तत्व का निर्विकल्प अनुभूति द्वारा ही साक्षात्कार हो सकता है, सविकल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता। तत्व के विषय में सविकल्प बुद्धि के इस अज्ञान को निकोलस ने बड़ा सुंदर नाम दिया है, ज्ञानो उत्पन्न अज्ञान या डॉक्टा इग्नोरंटिया। यह अज्ञान जो बुद्धि की चरम सीमा है, विद्वानों को ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। यह मूर्खों का अज्ञान नहीं, विद्वानों का अज्ञान है। यह अज्ञान तत्व की अज्ञता और अनिर्वचनीयता का ज्ञान है। यह नेति नेति का ज्ञान है। यह तत्व निर्विकल्प अनुभूति द्वारा ही साक्षात्कार है, इस सत्य का ज्ञान है। इन चारों स्तरों में अत्यंतिक पार्थक्य नहीं है। नीचे का स्तर ऊपर उठने का प्रयत्न करता है और ऊपर का स्तर नीचे के स्तर को अनुप्राणित करता है। निकोलस के इन विचारों का और ज्ञान के इन विविध स्तरों का स्पिनोजा पर भारी प्रभाव पड़ा और स्पिनोजा ने अपने दर्शन में इस सिद्धांतों को अपनाया है। पृष्ठ संख्या 75। यह तो स्पष्ट हो ही गया है कि निकोलस के अनुसार सत्य के विभिन्न स्तर हैं और तत्व का साक्षात्कार सविकल्प बुद्धि द्वारा न होकर अपरोक्ष अनुभूति द्वारा ही हो सकता है। बुद्धि के विकल्प न तो सर्वथा सत्य हैं और न सर्वथा असत्। संपूर्ण लौकिक व्यवहार इस सद सद विलक्षण बुद्धि का कार्य है। व्यवहार में इसकी सत्यता अनिवार्य है, किंतु इस व्यवहार को परमार्थ समझ लेना अज्ञान है। यह मानव की सबसे बड़ी भूल है। बुद्धि के लिए ईश्वर या परमार्थ विशिष्टाद्वैत तत्व का कोइंसिडेंसिया अपोजिट टर्म है। वह इस संपूर्ण जगत प्रपंच में अंतर्यामी अद्वैत है, भेद में अनुचित अभेद है। यहाँ द्वैत और अद्वैत में विरोध नहीं रहता, उनमें अंगांगी भाव स्थापित हो जाता है। द्वैत प्रपंच अद्वैत से अनुप्राणित होकर उसका अंग या विशेषण बनकर एक विलक्षण समन्वय बन जाता है। जड़ जगत और चेतन जीव दोनों ही ईश्वर के अंग या शरीर हैं। ईश्वर उन दोनों की आत्मा है, उन दोनों में अंतर्यामी रूप से विराजमान है। ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि जो कुछ है वह ईश्वर के आधार पर टिका हुआ है। सब कुछ ईश्वर के अंतर्गत है, उनके बाहर नहीं है। अद्वैत ईश्वर की आत्मा है। अमोनिया कॉम्प्लिकेंस, द्वैत ईश्वर का शरीर है या अमोनिया एक्सप्लिकेंस, ईश्वर की महिमा और शक्ति अनिर्वचनीय और अचिंत्य है। ईश्वर में सत्य एग्जिस्टेंस और चित एसेंस का तादाद में है। ईश्वर इस सृष्टि के केंद्र और परिधि दोनों हैं। वे बड़े से बड़े या मैक्सिमम और छोटे से छोटे या मिनिमम हैं। वे अणु से भी अणु और महान से भी महान हैं। इस ईश्वर सृष्टि में अंतर्यामी है और सृष्टि ईश्वर के अंतर्गत है। ईश्वर एक होते हुए भी अपनी अभिन्न और अचिंत्य शक्ति पोजेज इप्सम के कारण अनेकवत प्रतीत होते हैं। जैसे एक मुख का प्रतिबिंब यदि अनेक शीशों में पड़े तो अनेक मुख दिखाई देने लगते हैं, किंतु वस्तुतः मुख तो एक ही है, भेद केवल प्रतिबिंबों में है। उसी प्रकार ईश्वर भी अपनी अचिंत्य शक्ति के कारण जड़ और चेतन जगत के विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। पृष्ठ संख्या 76। जड़ है नश्वर ईश्वर या ड्यूस क्रिएटस और चेतन है मानव ईश्वर ड्यूस ह्यूमनस। व्यष्टि समष्टि का ही छोटा रूप है, अणु विराट का ही प्रतिबिंब है। प्रत्येक पदार्थ संपूर्ण विश्व को और ईश्वर को अपने आप में प्रतिबिंबित करता है, किंतु विभिन्न मात्राओं में। जड़ प्राण संवेदन बुद्धि इन चारों में विविध अंशों में ईश्वर का प्रतिबिंब झलकता है। उपनिषद की भाषा में इनको अन्नमय प्राणमय मनोमय और विज्ञानमय कोष कह सकते हैं। प्रत्येक में ईश्वरी चित शक्ति और उत्तरोत्तर विकास होता जाता है। अनंत आनंद के अनुभव के लिए ईश्वर का साक्षात्कार आवश्यक है। ईश्वर केवल अंतर्यामी या इमानेंट ही नहीं अपितु पर या ट्रांसेंडेंट भी है। वे अनंत अनिर्वचनीय और अचिंत्य है। वाणी और बुद्धि की पहुंच उन तक नहीं। उनका सर्वोत्तम निर्वचन नेति नेति या वाया निगेटिव है। स्पष्ट है कि इन विचारों का प्रभाव ब्रूनो स्पिनोजा लाइबनिट्ज सेलिंग और हेगल पर अलग अलग रूप में पड़ा है और अपने अपने अंशों में वे सब निकोलस के ऋणी हैं। निकोलस के पश्चात अब ब्रूनो के विचारों पर दृष्टिपात करना उचित है। बीच में मार्सिलियस फिसिनस 1433 से 1499 ने प्लेटो और प्लोटाइनस के ग्रंथों का लेटिन में अनुवाद किया और इनके विचारों का प्रतिपादन किया। पीको देला मिरांडोला 1463 से 1494 ने पाइथेगोरस प्लेटो प्लोटाइनस और यहूदी दार्शनिकों की विचारधाराओं को ईसाई विचारधारा में मिलाकर एक विचित्र रहस्यवाद की पुष्टि की। पोम्पोनाजी 1462 से 1525 ने एरिस्टॉटल के अध्ययन पर बल दिया और बताया कि एरिस्टॉटल के अनुसार आत्मा की अमरता आदि से ईसाई सिद्धांतों की पुष्टि नहीं होती और पेरसिल्सस 1493 से 1541 ने प्रकृति को ईश्वर का शरीर बतलाकर प्रत्येक वस्तु में ईश्वरी चैतन्य के न्यूनाधिक मात्रा में विद्यमान होने का समर्थन किया और मानव में यह चैतन्य सर्वाधिक मात्रा में होने से मानव के लिए ईश्वरी ज्योत का साक्षात करने और योग सिद्धि तथा रासायनिक विद्या द्वारा विश्व कल्याण करने की प्रशंसा की। अगले दार्शनिक हैं गियोर्दानो ब्रूनो 1548 से 1600 ईस्वी। ब्रूनो इटली के नीला नगर में उत्पन्न हुए थे। पहले वे कैथोलिक पादरी बने, किंतु बाद में अपने विचारों के कारण कैथोलिक मत से असंतुष्ट होकर उन्होंने उसे छोड़ दिया। पृष्ठ संख्या 77। प्रोटेस्टेंट मत भी उन्हें आकर्षित नहीं कर सका। ईसाई धर्म के दोनों संप्रदायों से असंतोष होने के कारण वे दोनों के ही कोप भाजन बनकर फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी में घूमते रहे। इटली लौटने पर धर्मांध पादरियों ने उन्हें रोम में 7 वर्ष तक बंदी रखा और तब भी अपने विचारों पर दृढ़ रहने के कारण 17 फरवरी सन 1600 के दिन उनको जीवित जला दिया। ब्रूनो एक महान दार्शनिक और भावुक कवि थे। पाइथागोरस, प्लेटो, प्लोटाइनस, निकोलस और कॉपरनिकस के सिद्धांतों का उन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। सबसे अधिक वे निकोलस के ऋणी हैं। निकोलस के विशिष्टाद्वैत और अद्वैत की विचारधाराओं को उन्होंने और अधिक स्पष्ट करके पुष्ट किया। उनका अद्वैत विचारधारा स्पिनोजा में और विशिष्टाद्वैत विचारधारा लाइबनित्ज में विकसित हुई। ब्रूनो के अनुसार यह संपूर्ण चिद्रूप विश्व ईश्वर का ही स्वरूप है। स्वयं ईश्वर ही जड़ चेतनमय विश्व के रूप में भासित होते हैं। ईश्वर और विश्व एक ही है। इसका अर्थ यह है कि विश्व की ईश्वर से भिन्न अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। विश्व ईश्वर के अंतर्गत है। विश्व ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि ईश्वर भी विश्व के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। विश्व ईश्वर को सीमित नहीं कर सकता। ईश्वर विश्व में अंतर्यामी इमानेंट रहते हुए विश्व के पार ट्रांसेंडेंट भी है। वे अंतर्यामी और पर दोनों है। विश्व उनका शरीर है। वे विश्व की आत्मा हैं और वे विश्व के पारगामी अनिर्वचनीय तथा अचिंत भी हैं। अनिर्वचनीय और अचिंत ईश्वर का साक्षात्कार निर्विकल्प अनुभूति द्वारा ही हो सकता है, मानवी सविकल्प बुद्धि द्वारा नहीं। बुद्धि अद्वैत का साक्षात नहीं कर सकती। उसके लिए सर्वोच्च तत्व विशिष्टाद्वैत ही है। एक ही तत्व भेद की दृष्टि से विश्व प्रतीत होता है और अभेद की दृष्टि से ईश्वर। वस्तुतः बुद्धि भेद और अभेद को अलग अलग नहीं कर सकती। भेद गौण है, वह अभेद का विशेषण मात्र है। बिना अभेद के आधार के वह टिक नहीं सकता। अभेद मुख्य है, किंतु वह भेद को अनुप्राणित करता रहता है और उसी में अव्यक्त होता है। अतः तत्व भेद विशिष्ट अभेद या द्वैत विशिष्ट अद्वैत है, जिसे संक्षेप में विशिष्टाद्वैत कहते हैं। विश्व ईश्वर का स्वभाव है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, क्योंकि विश्व ईश्वर में से अपने आप निकल पड़ा है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि विश्व निकल कर ईश्वर के बाहर आ गया है। निकलने पर भी वह ईश्वर के अंदर ही स्थित है। पृष्ठ संख्या 78। क्योंकि जो कुछ है ईश्वर ही है और ईश्वर के बाहर कुछ नहीं। विश्व और ईश्वर में अचिंत्य तादात्म्य है। ईश्वर ही विश्व है, ईश्वर ही विश्वात्मा है और ईश्वर ही परात्पर है। ब्रूनो ने इस चिद्रूप संसार को, जो ईश्वर का शरीर है, विराट या विश्व, नेचुरा या नेचुरेटा का नाम दिया है। इस विराट की अंतर्यामी आत्मा को, इस शरीर के शरीरी को उन्होंने विश्व आत्मा या नेचुरा नेचुरांस कहा है। शरीर और आत्मा के सगुण रूप में प्रतीत होने वाले इस निर्गुण तत्व को उन्होंने अचिंत्य परात्पर तत्व, एंस एब्सोल्युटम इनडिटर्मिनेटम, कहकर पुकारा है। आगे चलकर स्पिनोजा ने इन तीनों नामों का इसी अर्थ में प्रयोग किया है और इस सिद्धांत को अपनाया है। ब्रूनो के अनुसार विश्व, विश्वात्मा और पर ये तीनों अनंत हैं, क्योंकि एक ही तत्व के विभिन्न रूप हैं। वस्तुतः अनंत तो केवल पर ही है। इसको उन्होंने पूर्ण अनंत या एब्सोल्यूटो इन्फिनिटो कहा है, क्योंकि यह निर्गुण और अचिंत्य है। विश्वात्मा को उन्होंने अनवच्छिन्न और व्यापक अनंत, टोटलमेंटो इन्फिनिटो कहा है, क्योंकि यह अंतर्यामी ईश्वर का स्वरूप है। अंतर्यामी होने के कारण ईश्वर विश्व के अंग प्रत्यंग में व्याप्त है, अतः वे व्यापक रूप से अनंत हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। अतः वे असीमित या अनविच्छिन्न होने के कारण भी अनंत हैं। विश्व को ब्रूनो ने केवल अनविच्छिन्न अनंत या टूटो इन्फिनिटो कहा है, क्योंकि ईश्वर का शरीर होने के कारण यह विश्व भी असीमित या अनवच्छिन्न है। किंतु विश्व अपने अंग प्रत्यंगों का समूह मात्र है, वह उनमें व्याप्त नहीं है, अतः उसे व्यापक अनंत नहीं कहा जा सकता। आत्मा ही शरीर के अंग प्रत्यंगों में व्याप्त हो सकती है, शरीर स्वयं अपने अंगों में व्याप्त नहीं हो सकता। विश्व और अंतर्यामी विश्व आत्मा का यह भेद शरीर और आत्मा का भेद है। इन सब विचारों का स्पिनोजा पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। जैसे स्पिनोजा को ईश्वर प्रेमेनोन्मत्त या गॉड इंटॉक्सिकेटेड कहा जाता है, वैसे ही ब्रूनो को ईश्वर प्रेमी या गॉड लविंग। अब ब्रूनो के उन विचारों पर भी दृष्टिपात कर लें जिनको आगे चलकर लाइबनित्ज ने अपनाया। ब्रूनो के अनुसार ईश्वर के अतिरिक्त और कोई तत्व नहीं है और ईश्वर का स्वरूप चैतन्य है। अतः चैतन्य के अतिरिक्त अन्य कोई तत्व नहीं है। चैतन्य और तत्व, बोध और सत्ता एक ही है। अतः जड़ और चेतन का, अचित और चित का विभाग काल्पनिक है। जिसको हम जड़ समझते हैं वास्तव में वह भी चेतन ही है। पृष्ठ संख्या 79। अंतर केवल इतना ही है कि जड़ में चैतन्य सुप्त अवस्था में है और चेतन में जागृत अवस्था में। जड़ में चैतन्य गुप्त और चेतन में प्रकट। सृष्टि का अर्थ है चैतन्य का क्रमिक विकास। यह चैतन्य जड़ में अन्न या मैटर रूप में, वनस्पत पशुओं और मनुष्यों में, प्राण या लाइफ रूप में, पशुओं और मनुष्यों में, मन या माइंड रूप में, तथा मनुष्यों में बुद्धि या विज्ञान या रीजन रूप में विकसित होता है। चैतन्य रूप ईश्वर से ही सृष्टि की उत्पत्ति और स्थित है और उसी में सृष्टि का तिरोधान होता है। सृष्टि में जो चैतन्य सत्ता व्याप्त है उसको ब्रूनो ने चेतन अणु, चिदड़ु या जीवाणु या मोनाड का नाम दिया है। ईश्वर को वे जीवाणुओं का जीव या मोनाड ऑफ मोनाड्स कहते हैं। लाइबनित्ज ने इन नामों को और इन सिद्धांतों को ग्रहण करके अपने दार्शनिक सिद्धांत का विकास किया है। अंतर यह है कि ब्रूनो के लिए ये जीवाणु ईश्वर के आभास मात्र हैं, उनके विवर्त हैं, और लाइबनित्ज को इन जीवाणुओं की स्वतंत्र सत्ता मान्य है। यह ब्रूनो के दर्शन की संक्षिप्त रूपरेखा है। ब्रूनो का आत्म बलिदान दर्शन साहित्य में अमर हो रहेगा। पाश्चात्य दर्शन में मध्ययुगीन धार्मिक श्रृंखलाओं को सर्वप्रथम ब्रूनो ने ही तोड़कर फेंक दिया। ब्रूनो से पहले का मध्ययुगीन पाश्चात्य दर्शन ईसाई धर्म का दास बनकर रह रहा था। दर्शन को धर्म की इस हजार वर्ष की दासता से मुक्त करके उसको स्वतंत्र बनाने का श्रेय ब्रूनो को है। अगले दार्शनिक हैं टोमस कैंपानेला। कैंपानेला 1568 से 1639। कैंपानेला पर प्लेटो और संत अगस्टाइन का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक दार्शनिक प्रजातंत्र या रिपब्लिक के आधार पर कैंपानेला ने अपनी पुस्तक सूर्यनगर, सिटी ऑफ द सन की रचना की। कैंपानेला को अपने दार्शनिक विचारों के कारण और स्पेन के राजा के विरुद्ध षड्यंत्र करने के झूठे अभियोग के कारण जीवन के 27 बहुमूल्य वर्ष कारावास में व्यतीत करने पड़े। कैंपानेला ने आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के पिता कहे जाने वाले फ्रांसीसी दार्शनिक डेकार्त के जीव और ईश्वर संबंधी विचारों को अभिव्यक्त कर दिया था। ये विचार कैंपानेला के मौलिक विचार नहीं थे, इनके बीज संत अगस्टाइन के दर्शन में विद्यमान थे। यहाँ से कैंपानेला ने उन्हें लिया, अतः कैंपानेला को संत अगस्टाइन और डेकार्त के बीच की श्रृंखला मानना उचित है। पृष्ठ संख्या 80। कैंपानेला ने धर्म को आगम पर और दर्शन को तर्क पर आश्रित बतलाकर दोनों के अलग अलग क्षेत्रों का ब्रूनो के समान समर्थन किया। दर्शन का क्षेत्र स्वतंत्र है और उसका साधन ज्ञान है। इस ज्ञान के इंद्रिय प्रत्यक्ष अनुमान और समन्वय, ये तीन उत्तरोत्तर उत्कृष्ट भेद हैं। इंद्रिय प्रत्यक्ष निकृष्ट और धुंधला ज्ञान है। इंद्रियों से हम जिस बाह्य जगत का जिस रूप में अनुभव करते हैं उसे उसी रूप में सत्य नहीं माना जा सकता। इंद्रिय धोखा देने में निपुण हैं और इसलिए इंद्रिय अनुभूत के आधार पर किया गया तर्क भी सत्य को पूर्ण रूपेण प्रकाशित नहीं कर सकता। यदि किसी भी ज्ञान को पूर्णतः सत्य कहा जा सकता है तो वह है आत्मज्ञान। आत्मा का कभी निराकरण नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति को मैं हूँ इस प्रकार का अबाधित और निश्चयात्मक ज्ञान सदा होता है। आत्मा के अस्तित्व के विषय में संदेह को तनिक भी स्थान नहीं। विधि और निषेध, मंडन और खंडन, समर्थन और निराकरण, सिद्धि और अपलाप, ये धर्म आत्मा द्वारा ही किए जाते हैं, अतः ये आत्मा पर लागू नहीं। आत्मा का निराकरण नहीं हो सकता, क्योंकि जो निराकरण करता है वह स्वयं ही आत्मस्वरूप है। संदेह और निराकरण में भी संदेहकर्ता और निराकर्ता आत्मा की सत्ता स्पष्ट सिद्ध है, अतः आत्मा स्वतः सिद्ध तत्व है। दर्शन और ज्ञान में दृष्टा और ज्ञाता की सत्ता सदा सिद्ध है। संत अगस्टाइन ने इस विचार को इस सूत्र में प्रकट किया था, यदि मैं अपने अस्तित्व का निराकरण भी करूं तो भी मेरी या निराकर्ता की सत्ता अनिवार्य है, या सी फेलोर सम। और आगे चलकर डेकार्त ने इसी के लिए यह सूत्र बनाया, मैं ज्ञाता हूँ अतः मेरी सत्ता अनिवार्य है, या कैगिटो अर्गो सम। किंतु कैंपानेला ने इस विशुद्ध दृष्टा या ज्ञाता की विशुद्धता भूलकर इसे केवल व्यवहारिक जीवात्मा ही मानकर संतोष कर लिया। डेकार्त ने भी इसी परंपरा का निर्वाह किया। कैंपानेला के अनुसार यह स्वतः सिद्ध ज्ञाता जीव आत्मा है, जो चेतन है, सीमित है, परिच्छिन्न है और स्वसंवेदन का विषय है। इस परिच्छिन्न जीव को अन्य परिच्छिन्न जीवों का, जड़ जगत का और अपरिच्छिन्न ईश्वर का ज्ञान होता है। इस प्रकार चित अचित और ईश्वर रूपी तत्वत्र की सिद्धि होती है। परिच्छिन्न जीव को अपरिच्छिन्न ईश्वर का ज्ञान होता है, किंतु परिच्छिन्न को अपरिच्छिन्न का ज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक स्वयं अपरिच्छिन्न तत्व अपने ज्ञान को परिच्छिन्न जीव में उत्पन्न न करे। पृष्ठ संख्या 81। अतः अपरिच्छिन्न के ज्ञान से ही अपरिच्छिन्न की सत्ता भी सिद्ध हो जाती है। अनंत ईश्वर के ज्ञान मात्र से ही उनका अस्तित्व सिद्ध है, क्योंकि यदि ईश्वर न होते तो हमें ईश्वर है ऐसा ज्ञान भी नहीं हो सकता था। हमें पूर्ण ईश्वर का ज्ञान होता है और ईश्वर की पूर्णता में उनकी सत्ता भी अंतर्निहित है, क्योंकि यदि ईश्वर में सत्ता की कमी होती तो वे अपूर्ण होते। संत एंसेल्म और कैम्पानेला के इस विचार की पुष्टि आगे चलकर डेकार्त ने की। कैम्पानेला के अनुसार ईश्वर सृष्टा और नियंता है। सृष्टि सत्य और असत के, सत्य और अनित्य के मिथुन से उत्पन्न होती है। ईश्वर से हम ज्यों ज्यों सृष्टि की ओर उतरते जाते हैं, आनंद से ज्यों ज्यों विज्ञान मन और प्राण और अन्न की ओर उतरते जाते हैं, त्यों त्यों सत का तिरोभाव और असत का आविर्भाव बढ़ता जाता है। सृष्टि से ईश्वर की ओर चढ़ने पर क्रमशः सत और आविर्भाव बढ़ता है और असत का तिरोभाव होने लगता है। मानव का चरम लक्ष्य ईश्वरीय ज्ञान और आनंद की अनुभूति ही है।